A very, very warm welcome to our next session of Raj Yoga Meditation. And we are grateful to have Dr. B.K. Aditi Singhal with us to conduct it for you people. Let me give you a brief introduction of her. Dr. B.K. Aditi Singhal is a distinguished educationist, Guinness World Record holder, and an accomplished author. She has been practicing Raj Yoga meditation since 2009. She has to her credit two records in the Limca Book of Records for memory and fastest calculation. She has also been awarded the best memory trainer by the India Book of Records. Aditi Singhal is one of the experts in a special TV program for youth, Hum Honge Kamyab, where value-based solutions to youth-related problems are given. She has been invited as a keynote speaker on numerous popular platforms like TEDx, Facebook, Radio One, etc. We welcome you, Aditi sister.
Om Shanti. Drama mein jaisa destined hota hai, waisa hi hota hai. Sorry for the delay. Aaj आना था सुमन दीदी को, बट मुझे 7 बजे ही कॉल आया कि आपको लेना है सेशन, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया. बट अच्छा है, मौका मिला आप सबके साथ एक इंट्रैक्शन करने का. सो आज का सेशन वैसे तो रोज़ का ही, बट दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज जैसे दीदी ने पहले बताया था कि एक है साधक जिसको मेडिटेट करना है, एक है साध्य जिस पर मेडिटेट करना है, जिससे योग लगाना है, और एक है साधना. तो आज आपका जो चैप्टर है वो है साधना का, कि मेडिटेटर को कैसे कनेक्ट होना है उस सुप्रीम से, राइट. तो वो विधि सीखने के लिए ही हम सब यहाँ आए हैं. तो बहुत ध्यान से हम सुनेंगे भी, अनुभव करने की कोशिश भी करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे पहले हम उस सुप्रीम टीचर को जो स्वयं आकर हमें पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उसका आवाहन करते हैं. ओम शांति. हम सभी परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो मेरे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, आज मैं उनको शिक्षक के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में उनका आवाहन करती हूँ. और जैसे ही दिल से संकल्प करती हूँ, अनुभव कीजिए परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप ज्ञान सूर्य चमकती हुई दिव्य लाइट इस हॉल में हम सब के ऊपर अपनी तेजोमय किरणों का प्रकाश छत्र छाया के रूप में हम महसूस कर रहे हैं. स्वयं भगवान आकर अपने साथ योग लगाने की विधि सिखाते हैं. आई एम रियली ब्लेस्ड, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है. ओम शांति. तो यहाँ पर जो भी हम आपको बताएंगे वो कोई हमारा ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा का ज्ञान है जो वो आकर अपने बच्चों को सिखाता है. हमने जो सीखा वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. तो आज का जो चैप्टर राजयोग की विधि, तो जब हम योग की बात करते हैं तो कई प्रकार के योग हमारी बुद्धि में आते हैं. सबसे पहले तो कई पूछते हैं हमसे कि आप योग सिखाएंगे तो क्या हमको ट्रैक सूट में आना है, क्या कपड़े पहन के आना है. तो समझते हैं कि कुछ योगा है. तो बात सही है कि योग एक हट योग भी होता है, जहाँ पे आसन प्राणायाम करते हैं जो शरीर के को फिट रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी भी है. तो योग मतलब अपने अंगों का को हम भिन्न भिन्न रूप से जोड़ते हैं, राइट, उस एनर्जी को, फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए. देन संन्यास योग भी होता है, आपने सुना होगा, जहाँ पर संन्यास करना होता है, घर बार छोड़ देते हैं, कपड़े बदल लेते हैं। एक भक्ति योग होता है जहाँ भावना प्रधान होती है। फिर एक ज्ञान योग है जहाँ शास्त्रों को मानना ही परमात्मा से जुड़ना माना जाता है। कर्म योग है कि कर्म ही पूजा है। और एक है राजयोग जो हम यहाँ सीख रहे हैं। तो राजयोग में ये सारे योग समाहित हैं, क्योंकि भक्ति अर्थात भावना के बिना आप कनेक्ट नहीं हो सकते परमात्मा से, राइट। कर्म योग भी है क्योंकि ये योग ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ के लगाना है, हर कर्म करते परमात्मा से जुड़े रहना, तो कर्म योग भी है। संन्यास योग भी है, घर बार का संन्यास नहीं करना लेकिन अपनी कमी कमजोरी विकारों का संन्यास करना, बुराइयों का संन्यास करना, तभी आप उस सुप्रीम परम पवित्र उसके साथ जुड़ सकेंगे। देन ज्ञान योग भी है, जब तक ज्ञान ही नहीं होगा, आपको कितना सारा ज्ञान ही मिल रहा है ना, हाँ इतना तो आपने कई दिनों में लेते होंगे जितना यहाँ भोजन मिल गया ज्ञान का, लेकिन क्योंकि जब तक समझ नहीं है तब तक कनेक्शन भी किससे लगेगा। तो सही ज्ञान भी होना, ज्ञान के आधार से कनेक्शन, राइट। तो राजयोग मतलब जिसके अंदर, और राजयोग का क्या मतलब है, ऐसा योग जो स्वयं के ऊपर राज्य करना सिखाए। क्योंकि क्या कहते हैं, अपने ऊपर जिसने जीत पा ली मन जीते जगत जीत, राइट। तो इसलिए राजयोग में ये सारे योग समाहित हैं। अब योग का मतलब क्या है, योग शब्द ही ऐसा है कि एक ना डिफिकल्टी सी आती है, योग लगाना है, हाँ वो तो एकदम से कोई साधु महात्मा जी सामने आते हैं, हम घर गृहस्थ में रहने वाले कैसे योग लगाएंगे। तो परमात्मा हमको, अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें डिक्शनरी में, तो योग का मतलब होता है कनेक्शन, जुड़ना। लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर हमको बहुत सहज बात बताई है, योग मतलब याद करना, बस याद करना। याद करना तो हमको पहले से ही आता है, आता है या नहीं आता, है ना कुछ हम याद करते ही रहते हैं। तो यादें भी कितनी प्रकार की होती हैं, जब हम चीजों को याद करते हैं तो वो होता है भौतिक योग, फिजिकल थिंग्स के साथ हमारा कनेक्शन होता है। जब हम लोगों को याद करते हैं, करते रहते हैं ना सारा टाइम, वो है लौकिक योग। जब हम देव आत्माओं को याद करते हैं, देवी देवताओं को, तो वो है अलौकिक योग। और जब हम परमात्मा को याद करते हैं वो है राजयोग। तो हर लेवल पर अगर आप देखो, किसी ना किसी चीज को याद करते हो अपनी जरूरत के आधार से, लोगों को याद करते हो, तो आप योगी तो पहले से हो, है? याद करना अगर योग है तो याद तो हम पहले से ही करते हैं, राइट। तो बस करना क्या है, जब हम चाहें उस चीज को याद कर सके, वो राजयोग है ना। और किसको, सुप्रीम को। तो राजयोग मेडिटेशन जो है, इसमें तीन बातें हैं। पहली बात आत्मा, जिसका परिचय आपको मिल चुका, सुप्रीम सोल परमात्मा, उनका भी परिचय मिल चुका। कितना अच्छा कल दीदी ने बताया, है ना, कि बिल्ली का माँ बाप कैसे होंगे, गाय के माँ बाप कैसे होंगे, तो आत्मा के माँ बाप कैसे होंगे, है ना, वो माता पिता। मैं ज्योति बिंदु, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि मैं ये हूँ, ये तो क्लैरिटी है, राइट। तो मैं ज्योति बिंदु, मेरा पिता भी, माता पिता भी ज्योति बिंदु, राइट। तो दिस इज लिंक ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल। सेकेंड, दिस इज द लिंक थ्रू द हाइएस्ट मेथड, वो भी मेथड हम सीखेंगे। एंड व्हाई इट इज राजयोग, क्योंकि इससे हमें प्राप्तियां सबसे ऊंची होती हैं, ऊंची प्राप्तियां हैं जीवन में जो हम चाहते हैं, वो वाली प्राप्तियां हैं, ये छोटी मोटी प्राप्तियां नहीं, हाँ तो बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं। अब भगवान को हम सब याद करते हैं, कोई है ऐसा यहाँ पे जो ना करता, छोटी छोटी बातों पर याद करते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं में याद करते हैं, और भी कुछ कारण होते हैं। तो कुछ कारण मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, कनेक्ट कीजिएगा अपने आप को इस बात से। कई स्वार्थ से याद करते हैं, वैसे नहीं याद आती, लेकिन जैसे ही कुछ काम होता है उनको, तो सबसे पहले भगवान याद आता है, भगवान जी मेरा ये काम करा दो। और हम सब ने ऐसे याद किया है ना, किया है। फिर दुख में याद करते हैं, जब दुखी होते हैं कोई सहारा नहीं दिखता, तो लगता है एक सहारा तेरा प्रभु मुझे। डर से भी याद करते हैं, अगर मैंने वो पूजा नहीं करी, उस देवी को नहीं मनाया तो कहीं मेरे ऊपर कुछ अभिशाप तो नहीं आ जाएगा। और कुछ नियम से याद करते, रोज का उनका नियम है, सुबह उठना है, मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है या बत्ती जोत करनी है। और कई बार नहीं कर पाते ना तो उनके मुंह से यही रहता, आज पूजा नहीं करी, आज हमने जोत बत्ती नहीं करी, अरे 11 बज गए अभी तक नहीं करी। तो क्योंकि एक जैसे नियम है, करना है, तो अच्छी बात है कोई ना कोई कारण से तो भगवान को हम याद करते हो। अब आपसे प्रश्न पूछूंगी मैं, लेकिन पहले ये बता देती हूँ, ये चार प्रकार की जो यादें हैं ना, ये किस प्रकार से, एक जो भी हम, अब हमें परमात्मा को याद करना है तो चार प्रकार की यादें हैं और उसको हम कनेक्ट करेंगे, ये रियलाइज करते जाएंगे अपने साथ। एक होता है परिचय वाली याद, आप हर किसी को तो नहीं याद करते ना, सड़क पे इतने लोग, हजारों लोग चलते हैं, आप सबको देखकर याद करते हो नहीं, लेकिन अगर किसी का चेहरा आपके किसी से मिलता होगा आप देखते ही कहेंगे आपको कौन याद आएगा, ये व्यक्ति नहीं याद आएगा, इसको तो आप जानते ही नहीं, लेकिन इससे कनेक्टेड आपको जो आपकी बहन है या कोई है ये बिल्कुल वैसी लग रही है, तो कौन याद आया, जो आपका परिचित था। वैसे भी अभी भी आपको कोई याद आ रहा होगा, हाँ सचिन भाई कह रहे थे मेरे को ना बहुत याद आ रही है, मैं अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेकर आया, जो अपना होगा है ना, परिचित होगा उसी की याद आएगी, चाहे किसी से 10 साल पहले मिले होंगे उसकी याद, जिससे मिले ही नहीं, जिसको जानते ही नहीं, उसकी याद आ सकती है, आ सकती है, आ ही नहीं सकती। सो फर्स्ट थिंग इज जो मेरा परिचित है उसकी याद आएगी। सेकेंडली संबंध, जिससे मेरा जितना गहरा संबंध उतनी गहरी याद। तीसरा जिससे प्यार, संबंध तो कईयों से होता है लेकिन जिससे प्यार है उसकी ज्यादा याद आती है। और चौथी बात प्राप्ति, जिससे प्राप्ति होती है, जब तक प्राप्ति होती है तब तक उसकी याद आती है। अच्छा अब ये जो परिचय वाली याद है ये जरा मेहनत वाली याद है। आपके घर में कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, हा? तो क्या करना हो, क्या करते हैं आप, सोच सोच के कुछ लिस्ट तो फटाफट तैयार हो जाती है कुछ के लिए, अरे उन्होंने भी हमें शादी में बुलाया था, उनका नाम भी लिखो, अरे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम कैसे भूल गए उनका नाम, सोच सोच के भी लिस्ट देख लो कोई रह तो नहीं गया है, क्योंकि परिचित है हमारे, कल को मिलेंगे कहेंगे आपने बुलाया नहीं, है ना। तो ये सोच सोच के उनको, मतलब मेहनत करनी पड़ती है याद करने में, ऐसे ही नहीं याद आ जाते। संबंध के आधार से जो याद होती है वो सताने वाली याद होती है। जैसे मान लीजिए आपका बेटा या बेटी विदेश में गए, अब वो आपसे कभी अलग नहीं रहे लेकिन अब पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, अब आप कुछ भी खाते हैं उसकी पसंद का बनाते हैं, सुबह उठते अभी वो क्या कर रहा होगा, फ़ोन करूं, अरे अभी तो उनका टाइम जोन ही डिफरेंट है, तबीयत तो ठीक हो गई, किसी ने पूछा उसको नहीं पूछा, और एक दिन फ़ोन ना लगे कितनी याद सताती है ना। तो ये होती है सताने, मतलब आप भूलना चाहते हो भूल ही नहीं पा रहे हैं, एक्सपीरियंस है सबको, याद सताती है। फिर जहाँ स्नेह होता है वहाँ समा जाने वाली याद होती है, कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता, आप उसकी याद में समाए हुए हो। लड़की का रिश्ता हो जाता है, हाँ अब वो उसको अपने नए घर के की याद बनने लगती है, हाँ अपने हस्बैंड के साथ उसका एक संबंध बन जाता है, तो अभी गई नहीं है लेकिन ख्वाबों में खोई रहती है, इतनी खोई रहती है कि सामने टीवी चल रहा है, आसपास लोग हैं, पूछते अभी ये गया क्या, पता नहीं मैंने देखा नहीं, समाये हुए हैं उस याद में, खोए हुए हैं उस याद में। और प्राप्ति भरी जो याद होती है वो होती है स्वार्थ भरी याद, जब तक उस व्यक्ति से स्वार्थ है तब तक तो आपको याद आता है, है ना। आजकल बच्चों को भी कुछ चाहिए होता है तो फटाफट याद आता है, मम्मी की याद आती है, पापा की याद आती है, बाकी तो अपने मोबाइल में मस्त है। तो कहीं पर भी हमारा जहां स्वार्थ होता है, किसी से कुछ प्राप्ति है, उतनी देर हमारी याद रहती है। अब आपसे प्रश्न है, आपकी इनमें से भगवान के साथ कौन सी वाली याद है, मेहनत करनी पड़ती है याद करने के लिए, समा जाते हो और कुछ याद ही नहीं रहता, या सताती है बस भगवान मिल जाए कहाँ है भगवान, या स्वार्थ भरी याद है। हाँ जी, लव एंड अटेनमेंट, प्यार से याद करते हैं, समा जाते हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद में हम समा जाते हैं तो प्राप्तियां तो नेचुरल है, बाय प्रोडक्ट है उसका, है ना, फिर तो प्राप्तियों को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट राइट। तो अब क्या होता है, अभी तो आप कह रहे हैं लेकिन हम सबको यह अनुभव है, जब भगवान को हम याद करने बैठते हैं, आप सब में से ही कईयों ने मुझे अलग अलग बताया, तभी याद आता है बिजनेस में ये प्रॉब्लम चल रही है, रसोई में ये काम करना था, उसको फलाने को फोन करना था, कितनी याद रहती है भगवान के साथ, पाठ करते रहते हैं और बुद्धि में और काम चलते रहते हैं, समा जाते हैं, भूल जाते हैं बाकी सब कुछ, होता है ऐसा? जितना बच्चे की याद आती आती है भगवान की इतनी याद। तो क्यों नहीं आते, तो इसके लिए एक छोटा सा भी करते हैं प्रैक्टिस। भाई जी आगे आप बैठे, आंखें खोल के बैठे, अभी ये योग का टाइम नहीं है, ज्ञान का टाइम है, ठीक है। जब हम योग करेंगे, वैसे तो यहाँ योग भी हम आंख खोल के करते हैं, बट फिर बंद कर लीजिएगा, क्योंकि खुली आंखों से हमारा अटेंशन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अभी जो यहाँ दिखा रहे हैं सुना रहे हैं उसको देखिए। तो अभी हम सब थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस तो करते हैं ना, बैठना पड़ता है भगवान को याद करने के लिए, कहाँ चलते फिरते इतना याद रहता है, चलते फिरते तो गप्पे मारते रहते हैं, इधर की टेंशन उधर की टेंशन याद रहती है। तो अभी आपको क्या करना है, इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सर्कल है, इसमें इमेजिन कीजिए उन सब लोगों को जो आपसे परिचित हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट होगी, फटाफट निकाल लीजिए अपने बुद्धि के अंदर, इमर्ज कीजिए, ये भी ये भी ये भी ये भी जरा निकाल लीजिए, किस किस फील्ड से रिलेटेड है, घर वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार और आपके प्रोफेशन वाले, बहुत सारी लिस्ट है। चलिए अब इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हम लगभग रोज मिलते रहते हैं, रोज का ही कनेक्शन हमारा रहता है, वर्क प्लेस पे, घर पे, आ गए वो लोग याद, वो जल्दी आ गए होंगे। अब एक छोटा सर्कल बना लीजिए, इसके अंदर वो दो तीन लोग जिनके बिना आप जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकते, आपके बहुत प्रिय हैं, उन दो तीन लोगों को, वो तो बड़ी जल्दी आ गए होंगे, है ना, राइट, आगे सबके इमेज में। अच्छा मेरा प्रश्न ये है, इन तीनों सर्कल में से किसी में भी भगवान का नाम आया? सिर्फ एक का आया, क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ संबंध नहीं बनाया है। याद कौन आया, मैंने कहा उसको याद करो जो परिचित है, परिचित तो आपको मिला ना कल, जिसके साथ रोज आपका उठना बैठना है, तो अगर हम उसके साथ रोज उठते बैठते हैं और जिसके बिना जीवन ही नहीं, दुख होता है तो हम कहते हैं भगवान एक तू ही है मेरा, बाकी सब स्वार्थी, लेकिन उन दो तीन में भी नहीं आया वो, क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके लिए हमने एक मंदिर, आला, स्थान, समय निश्चित कर दिया है। अभी मंदिर कहती तो सब कुछ याद आ जाता, या जो भी आपका पूजा का स्थान है, प्रेयर का स्थान है ना, क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके साथ मेरा कोई संबंध हमने बनाया नहीं है, उसको संबंधियों से अलग कर दिया, जबकि उसके साथ मेरा सबसे पास का संबंध होना चाहिए था। तो हम भगवान से संबंध कैसे बनाएं और क्या संबंध बना सकते हैं हम? तो मुख्य हमारे जीवन में 6 संबंध होते हैं, बाकी संबंध तो खैर बहुत होते हैं। तो पहला संबंध मात पिता का संबंध, जिसको हम कहते हुए तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, आरतियों में तो बहुत गाते हैं, लेकिन कनेक्शन बनाने का मतलब सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, उसे हर दिन हर पल महसूस करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपने मात पिता का हाथ पकड़ता है, वो समझता है बस दुनिया में अगर कोई पावरफुल है तो मेरे माँ बाप है, वो अंधेरे में ले जाएं, वो कहीं ले जाएं, बच्चा कभी पूछता नहीं है कि आप कहाँ ले जा रहे हो, अगर वो मेरे साथ है तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, और कहीं अच्छी जगह भी कोई आंटी लेकर जा रही है, मम्मी का पल्ला नहीं छोड़ता, नहीं मम्मी के साथ ही जाना, चाहे कहीं ना भी जाने को मिले, और माँ बाप के साथ कहीं भी चल पड़ता है, बेफिक्र होता है ना, बेफिक्र होता है, एक विश्वास होता है। तो क्या वो बेफिक्री मेरे जीवन में है, या मैंने फिक्र का टोकर अपने सिर पे उठा रखा है? मैं अपना अगर अनुभव इसमें थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि जब शादी से पहले पापा बैठे हैं सामने, छोटी छोटी बातों की राय हम अपने पापा से लेते थे, कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ क्या करना है, हमारे को पूरी फ्रीडम थी सब कुछ करने की, बट एक विश्वास था मैं ठीक से अपना डिसीजन नहीं ले सकती, पापा ही लेंगे या मम्मी ही लेंगी, कुछ बातों के लिए मम्मी, कुछ बातों के लिए पापा, चाहे फ्रेंड से पूछ लेते थे लेकिन फिर भी डिसीजन वो लेते थे जो हमारे मम्मी पापा कहते थे, एक विश्वास था वो जो कहेंगे वही सबसे हमारे लिए ठीक है। शादी हुई, बच्चे हुए, अब हर बात तो नहीं मम्मी पापा से पूछेंगे, वैसे ही उन्होंने शिक्षा दी थी, अब तुम्हारा घर वो है, तो अब यहां लगने लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कैसे करेंगे, हम तो नहीं कर सकते, भारीपन होता था, एक हर बात के लिए अपने ऊपर बोझ महसूस होता था। लेकिन जब मैं इस ज्ञान में आई, अब मानते तो बचपन से हम भगवान की संतान है, बट बोझ क्यों महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि पता ही नहीं था उसको बोझ दिया कैसे जाता है। तो जब परमात्मा का मुझे परिचय मिला, मेरा सबसे पहला संबंध जो मैंने अनुभव किया वो पिता का संबंध अनुभव किया, क्योंकि पिता जो है वो हर प्रकार की हमारी नीड्स को पूरा करता है। पिता जब होता है तो बच्चा डरता नहीं है किसी चीज से, और मैं डरपोक बहुत थी, अगर अपने जीवन में कहूं तो कई बातों में मैं डरपोक थी। मम्मी पापा होते थे तो नहीं डरता, लेकिन कई स्थूल चीजों से डर, अंधेरे से डर था, कहीं कोई कुछ हो जाएगा मुझे इस बात का डर था, अपने प्रियजनों का डर था, हस्बैंड जरा से लेट हो जाए तो फिक्र, चिंता, उस टाइम इतना फोन भी नहीं हो, फोन तो था चलो मोबाइल, लेकिन हर प्रकार की चिंता, और अकेले जाने का तो बहुत ही डर था, मैं कैसे करूंगी, हर बात में क्वेश्चन आता था, मैं कैसे करूंगी इस काम को, मैंने तो आज तक नहीं करा, मुझे कोई सहारा मिल जाए तो ठीक है, कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए तो ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब भगवान का एक ये लगा वो मेरा पिता है, अगर मैं अपनी, हालांकि ये चैप्टर इसका है लेकिन मैं अनुभव के आधार पर सब बताती हूँ, स्टेज पे बोलने से बहुत डर लगता था, लेकिन इच्छा बचपन से थी कि मैं स्टेज पे बोलूँ, और वो क्या होता है, किसी फियर को अगर आप खत्म नहीं करो ना तो वो फियर और स्फेयर्स में भी बढ़ता जाता है, आपके जीवन के कई क्षेत्रों में उसका असर दिखाई देने लगता है, तो वो बढ़ता चला गया एज के साथ, और मुझे नहीं पता लगा कि वो बढ़ रहा है, लेकिन हर बात पे एंजाइटी होना, टेंशन होना, ये एक जैसे हिस्सा सा बन गया था मैं, लेकिन सोचती थी मैं हूं ही ऐसी। जब भगवान का परिचय मिला तो सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस आया, उसने मुझे रचा है, उसकी रचना में तो डिफेक्ट ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, अगर मैं उसमें कमी निकालती हूं इसका मतलब आई एम ब्लेमिंग गॉड द सुप्रीम, कितना पाप कर रही हूं मैं, जो हमेशा कह देते थे हम, रियलाइज हुआ कि वो मेरा पिता है। हाँ, मान लो अब दो पिता हो गए ना, एक पिता जिसने इसको जन्म दिया मातृ पिता, एक पिता जिसने इसको बनाया है, अब इसको बनाने वाला इसमें तो डिफेक्ट हो सकता है, थोड़ा काला गोरा लंबा मोटा है, कैसा भी हो सकता है नहीं, लेकिन इसका जो पिता है वो तो परफेक्ट है, उसकी तो रचना इम्परफेक्ट हो ही नहीं सकती, और ये जो रचना है यही सोचती है, यही डिसाइड करती है, ये तो नहीं करता, ये तो एग्जीक्यूट करता है उस चीज को, राइट। अब जैसे अभी एकदम से 7:02 पे फोन आया, आप ले लोगे क्लास, मैं कहा मैंने तो तैयारी नहीं करी थी, बट वैसे तैयारी रहती है, तो एक सेकंड में अच्छा वो भेज रहा है तो तू क्यों ना कर रही, वो कराएगा, चल हाँ जी ठीक है, नहीं तो पहले टेंशन हो जाती है, अभी मैं कैसे करूंगी, तो ठीक है हाँ जी। तो एक जब भरोसा हो जाता है तो वही जैसे परमात्मा का जब जैसे आया वो कनेक्शन कि भगवान ने मुझे रचा है और वो कह रहा है ये कर, वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है लाइफ में, मतलब जब मौके आए तो हिम्मत आई, कि अपने ऊपर नहीं हिम्मत आई, ये हिम्मत आई वो मेरे साथ है, वो करा रहा है, तो हुआ यू टू डाउट हिम, तेरे में इतनी मतलब भगवान को क्यों चैलेंज कर रही है, क्योंकि मैं कैसे करूंगी, वो करा रहा है, आप नहीं कर रहे, सरेंडर कर दो। तो वो बचपन की सारी बातें याद आने लगी कि पापा के साथ हम रात को भी जाते थे तो कभी डरे हैं, तो मैं अपने पापा के साथ जा रही हूं तो मैं क्यों डर रही हूं, तो यस कहने की हिम्मत आई और उसने फिर कराया। और जैसे जैसे उसको हर काम में अनुभव करती गई, उसके साथ मेरा संबंध गहरा होता गया। फिर आज मैं कह सकती हूँ 75 सिटीज से ऊपर मैं अकेली ट्रैवल कर चुकी हूँ, और वो भी कई कई दिनों के लिए। और कई कई एरियाज तो ऐसे भी थे जहाँ जंगल का एरिया भी था, रात की ट्रैवलिंग भी थी, अकेले होटल में ठहरना था, मैं कहीं दिल्ली में भी अकेले नहीं जाने वाली थी। वो हिम्मत कहाँ से आई? हर पल ये लगता था, घर से निकलती थी, बाबा चलो, कैब में बैठती थी, बाबा ड्राइवर की जगह आप बैठ जाओ, फ्लाइट में जाती थी, फ्लाइट तो बहुत देर में मिलती थी, उससे पहले हर सिक्योरिटी गेट से बाबा चलो। साथ ही बातचीत चलती थी, जैसे हम मन में बच्चे से बात करते हैं, पति से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, अब मेरी बात उनसे शुरू हो गई और बड़ा मजा आता था। पूछती थी कई बार, सामान इतना भारी है कौन उठाएगा? बाबा इशारे, मतलब मन में कम्युनिकेशन होने लगा, उसको कह, हो जाता था काम, तो बड़ा मजा आने लगा। लाइफ ही अपने में बड़ी इंटरेस्टिंग बन गई, वो और मैं बस। तो कई बार मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी, मैं इनका फर्स्ट हस्बैंड वो है, आप सेकंड हस्बैंड हो, फर्स्ट बेटा वो है, फिर उसके बाद ये दो बेटे। मैं हमेशा कहती हूँ तीन बेटे हैं मेरे, बड़ा बेटा शिव बाबा, दूसरा बेटा देवांश है, तीसरा ईशान है। तो वो जो कनेक्शन जब बनता है तो बेटे का काम भी करता है, पति का काम भी करता है, पिता का काम भी करता है, माँ का भी करता है, टीचर का भी करता है। हर संबंध उससे जब बन जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वाले जो संबंध है ना, देता वो इन्हीं के थ्रू है या किसी के भी थ्रू देता है, लेकिन कनेक्शन मेरा उससे है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो देहधारियों से नहीं होते, और ही आप उनको देने वाले बन जाते हो हर रूप से, क्योंकि आपको उससे मिल रहा है। हर प्राप्ति में आपको ये रहता है, ये तो बाबा ने किया, बाबा ने किया हर चीज में। तो उससे क्या होता है, आप लो नहीं आते, नहीं तो क्या होता है, वही जो कल बात हो रही थी, किसी ने तारीफ करी तो ऊपर चढ़ गए, किसी ने जरा सी आप में कमी निकाल दी तो आप नीचे आ गए। तो रिश्ता उसके साथ बनाना, तो वो जो कॉन्फिडेंस आया, आने जाने का कॉन्फिडेंस आया, बच्चों को पालने का कॉन्फिडेंस आया, उससे पहले मतलब मैं अगर बताऊं, मैं बहुत पिटाई करती थी अपने बच्चों की, हाथ बड़ी जल्दी उठता था मेरा, चिल्लाती भी थी, क्योंकि एक परफेक्ट आइडियल इमेज थी, मेरा बच्चा है तो ऐसा होना चाहिए, उसका बोलना, उसका बैठना, उसका पढ़ना ऐसा होना चाहिए। और कुछ अधिकार समझती थी कि मैं माँ हूँ, मेरा हक है। लेकिन जब यहाँ माता पिता की पालना के रूप में भगवान मिला, तो रियलाइज हुआ भगवान तो मुझे रोज मीठे मीठे बच्चे कहता है भगवान, क्योंकि टीचर बन के पढ़ाता भी हम रोज की स्पिरिचुअल स्टडी। अब आपका ये कोर्स चल रहा है, हमारे सब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास चल रही है, तो भगवान तो मुझे कभी नहीं कहता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, वो तो मेरी इतनी महिमा करता है, और मैं इन बच्चों को थप्पड़ भी लगा देती हूँ। तो मुझे बहुत कुछ भगवान की पालना से समझ में, वो मुझे कैसे देखता है, वो मुझे कैसे चलाता है, तो मुझे अपने बच्चों को भी उसी तरह देखने का एक नया नजरिया मिला, और बड़ा मजा आया उस पर भी। तो मतलब ऑल पेरेंटिंग में जो कहूँगी, हम हमेशा, मतलब मुझे था मैं अपनी मम्मी जैसे बनूँ, क्योंकि हमारी मम्मी ने हमारी पेरेंटिंग बहुत अच्छी करी। लेकिन वही बात है, आप किसी की तरह बन नहीं सकते, हर एक की अपनी पर्सनालिटी है। तो लेकिन भगवान ने मुझे वो सब सिखाया कि ऐसे देखो, ऐसे करो, हर आत्मा को आत्मा के रूप में देखो। तुम्हारे बच्चे नहीं है वो, तुम्हारे से आए हैं, आप माध्यम हो, निमित्त हो, लेकिन वो बच्चे तो भगवान के क्रिएशन है और वो परफेक्ट है। और जब उनके अंदर परफेक्शन देखनी शुरू करी, तो उनमें तो जो चेंज आना था मेरे अंदर चेंज आने लगा। तो कई सारे अनुभव हैं, वो तो आगे बात करेंगे फिर कभी। लेकिन मात पिता का संबंध, अगर मात पिता का संबंध होगा तो सबसे पहला चेंज जो आपकी लाइफ में आएगा, आप बेफिक्र रहोगे, क्योंकि जिसके सिर पे मात पिता होते हैं उसको चिंता नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक निशानी है। दूसरी रिश्ता जो है भगवान के साथ आप टीचर का संबंध बना सकते हैं, वो मेरा टीचर और मैं उसका स्टूडेंट। स्टूडेंट को टीचर जो होता है वो क्या पढ़ाता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, दुनियावी नॉलेज देता है। भगवान भी हमको, अभी ये तो गहराई की बातें हैं, लेकिन भगवान हमें कई प्रकार से हमें शिक्षाएं देता है, हमारे जीवन के लिए भी देता है, हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स लैंग्वेज सब पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है वो डिटेल की बात है, लेकिन वो हमें केवल ज्योग्राफी ऐसे नहीं बताता है 7 कॉन्टिनेंट्स की, वो बेहद की ज्योग्राफी बताता है, वो तीनों मूल उसकी ज्योग्राफी बताता है, हमको 3 वतन कौन से हैं, वो हमें चारों तीनों कालों का ज्ञान देता है। सिर्फ हिस्ट्री नहीं सुनाता, वो फ्यूचर भी बताता है और फ्यूचर के लिए तैयार भी करता है। तो वो टीचर बनता है, टीचर बन के हमें शिक्षाएं देता है, और वो शिक्षाएं हमें कब काम आती हैं, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो कहते हैं भगवान हमें ज्ञान रतन देते हैं, हमारी बुद्धि को ज्ञान रतन से सजाते हैं, तो वो जो समझ मिलती है, तो कोई भी बात आती है तो वो समझ का एक दाना, एक मोती जो है ना, वो उस टाइम काम आता है, क्लिक करता है, पावन ने ये कहा इस टाइम ये करना। सो वी हैव ऑलरेडी द सॉल्यूशंस, अब आपको बस वो फिट करना होता है, ये प्रॉब्लम आई इसमें ये सॉल्यूशन डालना। तो उससे इतना इजी हो जाता है, तो टीचर क्या कहता है, क्योंकि अपनी बुद्धि चलाने से कई बार लगता है गलत तो नहीं कर देंगे, लेकिन कई बार मेरे को भी नहीं समझ में आता, तो मैं दीदी से पूछती हूँ, दीदी ये सिचुएशन है, बाबा क्या कहते हैं इसमें, इजी हो गया, बाबा का क्या सॉल्यूशन है, इजी हो गया, फिर मुझे बुद्धि लगानी नहीं अपनी। तो टीचर का संबंध, फिर गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु जो होता है वो जीवन के अंदर ना हमारे जीवन को आध्यात्म से सजाता है, हमें जीव केवल किताबी शिक्षा नहीं देता, लेकिन और कई प्रकार के हमें वरदानों से पालता है। कहते हैं गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है, वरदानों की छत्र छाया, हाँ गुरु से वरदान मिलते हैं। तो गुरु का भी एक संबंध है, परमात्मा जो है वो सतगुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, तो उसके साथ वो संबंध। फिर खुदा दोस्त का संबंध, भगवान मेरा दोस्त है, भगवान मेरा साथी है, बहुत सुंदर संबंध है ये भी, राइट। हमें एक ही संबंध नहीं बनाना, एक संबंध से कैसे काम चलेगा, आपको बच्चा भी चाहिए, आपको पति भी चाहिए, आपको माता पिता भी चाहिए, सारे संबंध चाहिए ना अपने जीवन में, आपको दोस्त भी चाहिए। जो बात हम स्पाउस से नहीं कर सकते, माँ बाप से नहीं कर सकते, वो दोस्त से कर लेते हैं, तो दोस्त भी तो चाहिए ना। तो जैसे कृष्ण और अर्जुन का दोनों सखा थे ना, तो उस रूप से। फिर साजन सजनी का संबंध, हाँ तो ये संबंध भी बहुत बहुत सुंदर संबंध है, जिसको समझने में मुझे टाइम लगा, लेकिन मतलब मैं ये कहूँगी, मैं सोचती थी, मैं पूछती थी सबसे, मैं भाइयों से पूछती थी यहाँ के, हाँ आज रुपेश भाई आज सुबह अमृत वेला में आए थे, और कई भाई, मैं कहा बहनों के लिए तो ईजी है, चलो वो सजनी बन गई, बाबा साजन बन गया, आप भाई कैसे साजन सजनी का संबंध अनुभव करते हो। तो उन्होंने बताया हर संबंध के पीछे क्वालिटी होती है, जैसे मैंने कहा ना मात पिता का संबंध अर्थात बेफिक्र होंगे आप, साजन सजनी का संबंध कैसा होता है, वफादारी का संबंध होता है ना। तो आपको एक मतलब सजनी जो होती है वो साजन के प्रति कहते हैं कि वो सिर्फ उसको याद करती है और किसी को नहीं, उसके मन में एक ही बसा होता है, पतिव्रता होती है नारी, तो एक पति बस याद रहे। तो अगर साजन सजनी का संबंध मतलब जो आपको एक हस्बैंड से जो आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो मेरी केयर करे, श्रृंगार करे, है ना, हर प्रकार से मुझे पूछे, प्यार करे, वो हम बाबा से जब संबंध बनाते हैं, दैट्स अ ब्यूटिफुल संबंध। तो एक, लेकिन उसके लिए सजनी को क्या करना पड़ता है, उसे एक को याद करना पड़ता है। तो उस रूप से, ऐसा नहीं कि हमारा ये यहाँ पर जो स्पाउस है उससे हमारा कनेक्शन कट जाता है, नहीं, लेकिन वो कनेक्शन भी जब हम उसके साथ महसूस करते हैं, टाइम लगता है हर रिश्ते को बनने में, तो वो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, जहाँ आपका संबंध इनफैक्ट अपने स्पाउस से इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि पहले आपका संबंध जो होता है एक्सपेक्टेशंस के आधार पर होता है। 4 सेशंस हमने 2 राधिका दीदी और 2 गिरीश भाई के सुने, अधिकतर एग्जाम्पल्स किसके थे? पति पत्नी के एग्जाम्पल्स थे. और सारी एक्सपेक्टेशंस पे ही तो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना. तो जब हम बाबा के साथ अपना संबंध ऐसा बना लेते हैं ना, तो मतलब आपके लाइफ की एक्सपेक्टेशंस ही खत्म हो जाती है. यू स्टार्ट रिसीविंग एवरीथिंग एंड देन यू स्टार्ट गिविंग टू दैट रिलेशनशिप जो हमारा फिजिकली है यहाँ पर. और बच्चा, भगवान मेरा बच्चा, तो ये संबंध भी बड़ा प्यारा है. मेरे को ये दो संबंध बनाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव. एक दिन मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा बाकी संबंध अनुभव कर लिया, आप बच्चे कैसे बनोगे? हम बच्चे तो हैं दो मेरे पास, बच्चे कैसे बनोगे? तो मैंने कहा आज मुझे अनुभव कराना. ठीक है, दिन शुरू हुआ और सारा दिन ऐसे ही बीतता गया. मेरे को याद भी नहीं आया मैंने बाबा से ऐसा कुछ कहा है. शाम के टाइम मुझे अगले दिन कहीं जाना था, तो उसके लिए सूटकेस उतारना था. हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो ऊपर से उतारना था. मैंने बेटे को आवाज लगाई, मैंने कहा बेटा इधर आना. वो कुछ कर रहा होगा अपना, वहीं से आवाज थी, मम्मी मैं नहीं आ रहा, आप कर लो, आपको जो करना ना अपने आप कर लो, मैं नहीं आ रहा. मेरे को एकदम से याद आया, अरे गलत बेटे को आवाज थी, बड़े बेटे को बुलाना था. शिव बाबा, शिव बालक, आ जाओ जरा, चलो मेरे साथ सीढ़ी लेकर आओ, सूटकेस उतारते हैं. तो मैं जैसे ही अभी खड़ी हुई थी लेने के लिए, वही बेटा दौड़ता हुआ आया. कहता है मेरे से, मम्मी हाँ बताओ क्या करना है? सीढ़ी लानी है. और मेरे मन में आया ही नहीं कि अभी तो तूने मना किया था, मेरे मन में ही आया, इतनी जल्दी आ गए. आया तो कौन था? तो उसने तो मना कर दिया था, ये कौन आया है? तो इतना मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने आज कहा था आपको बच्चे का संबंध है ना. तो ऐसा नहीं है कि हमें उन बच्चों से कुछ नहीं कराना है, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हर बात में हम उसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तो ना इन बातों में शिकायतें रहती हैं हमारी, ना एक्सपेक्टेशंस रहती हैं. तो बहुत सुंदर रूप से मतलब इसकी बड़ी गहराई है जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, और करते भी हैं, ऐसा नहीं हम सबने किया है. हम सब ने भगवान को किसी ना किसी रूप से मदद जब हमें मिलती है, तो एहसास होता है हमको, ये तो भगवान ही था और कोई कौन कर सकता है, राइट? तो और इसके अलावा भी बहुत संबंध है. भगवान मेरा सर्जन, मैं तो बहुत बार याद करती हूँ, दांत की रूट कैनाल भी करानी हो बाबा, इसको तो पता नहीं अनुभव है या नहीं, आ जाना जरा, मेरे से दर्द ही सहन होता, आप ही कर देना. तो बस यही देखते उसके हाथों में बाबा के हाथ आ गए, किरणें आ गई, बाबा कर रहे हैं, सुप्रीम सर्जन है वो. सर्जन मेरी शरीर की सर्जरी नहीं करता, लेकिन जब कभी मन ऐसा होता है, बाबा आज मन में कुछ आ गया, इन्फेक्शन हो गया है, आ रही हूँ आपके पास सर्जरी कर देना, रोज कराती हूँ. आज हम करेंगे भी थोड़ा सा अनुभव करके देखेंगे. तो सर्जरी आजकल लेजर सर्जरी चलती है ना, मैं कई बार अनुभव करती हूँ बाबा की किरणें एक लेजर लाइट बन के मेरे अंदर, मेरे मन में जो बात है उसका ऑपरेशन कर दिया है, भस्म कर दिया उसको, खत्म कर दिया उसको. और साथ में क्या भरती हूँ, दवाई डालते हैं फिर उसके बाद उसके अंदर. तो कोई ना कोई गुण जो चाहिए, जैसे राधिका दीदी ने वो 36 गुण दिखाए थे. तो कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा मन थोड़ा लो होता है, तो क्या आ गया, बीमारी आ गई ना, इमोशनली डाउन हो गए आप. तो सर्जरी कराई, बाबा का गुण भरा इंजेक्शन से, ये गुण आ गया मेरे अंदर, नाउ अब मुझे जो करना है इस गुण के थ्रू करना है, हो गया. क्या जरूरत है किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की, किसी को बताने की? वो बैठा है, मेरे दोस्त रूप से बैठा है, सर्जन रूप से बैठा है, पिता रूप से बैठा है, सब कुछ कर रहा है. तो अब आपको कौन सा संबंध बनाना है बाबा से? बाबा कहना मतलब ये जो चित्र आप देख रहे हो वो नहीं, ये सिर्फ माध्यम है. बाबा मतलब वो ज्योति बिंदु, क्योंकि मैं बिंदु हूं, मेरा पिता भी बिंदु है, लेकिन वो सिंधु है बिंदु, देखने में उसका स्वरूप बिंदु है, लेकिन सागर है, हर गुण का सागर है, शक्तियों का सागर है. कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अभी कौन सा संबंध बनाना है? सबसे पहला संबंध कौन सा अनुभव करना, आज से एक संबंध बना लीजिए. ठीक है, बाबा को आज कह दीजिए, अपने मन ही मन कह दीजिए, बाबा मुझे आपके साथ ये संबंध अनुभव करना, चलते फिरते. ठीक है, चलिए. अब मेडिटेशन, क्योंकि हम राजयोग सीख रहे हैं, तो राजयोग के बारे में कुछ बातें और समझ लेते हैं. राजयोग कोई प्रार्थना नहीं है, तो प्रार्थना में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। जाते हैं, आरती गाई, अपनी बात कही, कंप्लेंट करी, हाँ, प्रसाद लगाया, पाठ किया, वापस। उसने क्या कहा वो तो हमने सुना ही नहीं। मेडिटेशन इज टू वे। एकदम से नहीं आपको उसकी आवाज, कोई ऐसा नहीं आपके कानों में कोई आवाज आएगी, लेकिन आपको कुछ टचिंग होगी। जरूरी नहीं उसी टाइम हो, किसी और टाइम भी हो सकती है। सो दैट इज मेडिटेशन। बाबा कहीं ना किसी किसी ना रूप से करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ अपना, कि वैसे तो मेडिटेशन तो जब हम बैठते हैं, चलते फिरते हैं, कनेक्शन लगा रहता है, तो सॉल्यूशंस वैसे ही मिलते हैं। एक बार मेरा कोई काम नहीं हो रहा था, तो मैं ऐसे ही, क्योंकि 3-4 साल हो गए थे इस ज्ञान में, बहुत सारी चीज़ें अटके जा रही थी, रुके जा रही थी, जहाँ सोचूं वहीं रास्ता ब्लॉक दिखता था। तो मैंने बाबा की फ़ोटो के आगे बैठी थी, मैंने कहा ऐसे, बाबा हम तो आपके बच्चे हैं, सफलता मूर्त, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं, सफल क्यों नहीं हो पा रहे, हमारे बीच में ये बाधा आपके होते कैसे आ रही है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा ये। तो मैं अभी कह ही रही थी, इतने में मेरा छोटा वाला बेटा जो उस टाइम 3rd क्लास में था, तो वो भागता हुआ आया और रोने लगा, क्योंकि मेरा बड़ा वाला 5th में था उस टाइम, उसको पेन दिलाए थे उस दिन स्कूल से, तो वो एकदम से मेरे को रो, कि उसको पेन का शौक था और मैं देती नहीं थी, राइटिंग खराब हो जाएगी, आपने भाई को पेन दिलाया, मुझे पेन नहीं दिलाया, मुझे भी पेन दिलाओ। कहाँ दिलाऊंगी दिलाऊंगी, नहीं मुझे अभी चाहिए पेन। तो मैंने प्यार से उसको गोदी में बिठाया, गले से लगाया और बस 2 मिनट ऐसे प्यार करते रहे उसको, और उसको बोला मैंने, मैंने कहा देखो मैं आपकी मम्मी हूँ ना, मुझे पता है ना आपको पेन, आपको जब पेन दूंगी ना 5th क्लास में, तो मैं उससे भी ज़्यादा दूंगी, जो आप कहोगे जितने चाहोगे उससे ज़्यादा दूंगी, मम्मी को पता है ना कब देना, अभी नहीं, अभी राइटिंग ख़राब हो जाएगी। और ये कह के जैसे ही मैंने गले लगाया, सामने देखा, ऐसा लगा कि बाबा मुझसे कह रहा है मैं तेरा माता पिता हूँ ना, मैं तेरी मम्मी हूँ ना, तो मुझे कब देना है मुझे पता है, तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुझे मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसी डीप रियलाइजेशन हुई कि जैसे बाबा कह रहे हैं अभी तू वो ले लेगी, तो वो जो मैं तैयार कर रहा हूँ तेरे को, इतनी निश्चिंतता, इतना प्यार आया ना बाबा के लिए, कि बाबा आपने तो मेरी सारी मतलब सोच ही हर ली। तो वो जो कनेक्शन होता है ना हमारा, अब मतलब मेडिटेशन चलते फिरते बातचीत है, टू थिंक, राधिका दीदी ने कितना अच्छा बताया था, मेडिटेशन इज व्हाट, जस्ट थिंक, थिंकिंग ही तो है, थिंकिंग से ही तो याद करते हैं ना हम, सोच से ही तो याद करते हैं ना। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, हर टाइम एक आपको आंसर मिलता रहता है बातचीत जब होती है, तो दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई मंत्र जाप नहीं है। कई बार हमसे कोई लोग पूछते हैं, कहते हैं यहाँ पर ज्ञान लेंगे तो कोई आप मंत्र देंगे, ओम नमः शिवाय, आप तो शिव जी को मानते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई मंत्र, मंत्र मतलब होता है हम एक पर्टिकुलर दिशा दे देते हैं बस, हाँ, मंत्र में अपने मन को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन बंधता नहीं है। आप सबका अनुभव होगा, आप कोई भी मंत्र का जाप कर लो, मंत्र कई होते हैं, हर मंत्र मैं कहूँगी उनके शब्दों को समझ के उसके मीनिंग में रहकर अगर आप जाप करते हो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपको प्राप्तियों का अनुभव होता है, क्योंकि वो शब्द ही ऐसे होते हैं, पावरफुल होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हाथ चलता रहता है, माला आगे बढ़ती रहती है, और सिर्फ हम गिनती कर रहे होते हैं और मन में कुछ और ही कैलकुलेशन चल रही होती है। जिनसे छुटकारा पाने के लिए माला हाथ में ली थी, वही सबसे ज्यादा याद आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए। आपको यहां पर अगर आपकी फेवरेट डिश पहले दिन मिल जाती, मिली भी होगी कईयों को या कभी मिली होगी, आपने कहा अरे वाह अदिति बहन, आपने तो हमारे पसंद का बनवाया है, और मैंने सुन लिया, हाँ राजमा चावल किसी के पसंद के थे, अच्छा तो फिर मैं कहा अच्छा भैया ऐसा है शाम को भी राजमा चावल बना देना, सुबह नाश्ते में भी राजमा चावल बना देना, दिन में भी राजमा चावल बना देना। वो आके भाई पूछता है बहन कुछ और भी है, अरे भाई आपको पसंद है राजमा चावल, वो ठीक है खा लिया, एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया। तो मन भी ऐसा ही है, उसको वैरायटी चाहिए। एक ही चीज नहीं कर सकता हूँ। तो मंत्र जब हम दे देते हैं कुछ समय के लिए तो मन शांत रहता है, एकाग्र रहता है, फिर भटकने लगता है। तो मेडिटेशन मंत्र नहीं है, मेडिटेशन बातचीत है, कम्युनिकेशन है। फिर मेडिटेशन का मतलब नो थॉट्स नहीं है। कई ऐसा समझते हैं मेडिटेशन मतलब शून्य हो जाओ। शून्य तो जब शरीर निकल जाता है तभी शून्य होता है, तभी वो ब्लैंक लाइन आती है। उससे पहले जो ये लाइन आती है ना वो आपका क्योंकि मन चल रहा है। कोमा में हल्का हो जाता है, क्यों? क्योंकि कोमा में जब व्यक्ति होता है उसका ये मन की स्पीड स्लो हो जाती है। बट जब हम अवेक हैं और जब हमारे अंदर पूरी बुद्धि है तो ऐसे ही चलता है। तो मन का मतलब ऐसा, मन जीरो शून्य कभी नहीं होता। अगर हम ये भी सोचें कि कोई सोचना है, तो कोई सोचना है तो वो भी मतलब क्या, ये भी तो आपने थॉट क्रिएट किया ना। शून्य नहीं होता। मैं एक बार अभी 2 साल पहले 3 सुखिया में वहां के डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठी थी। तो मेरे को कहते हैं, मैडम मैं कोविड के टाइम में मैंने बहुत मेडिटेशन करी, 3-3 घंटे मैं थॉटलेस हो जाता था। 3 घंटे थॉटलेस? आप 10 सेकंड थॉटलेस होकर दिखाओ, हो ही नहीं सकते। आप अगर शांत भी होंगे तो किसी एक थॉट में होंगे, किसी एक थॉट पर आपका फोकस होगा। लेकिन लोगों को पता नहीं लगता कि हमारा चल रहा है अंदर इतना, वो नॉर्मल सा, क्योंकि है ही नॉर्मल ना। तो थॉटलेस होना हमारा लक्ष्य भी नहीं है। लेकिन यहां हमारा लक्ष्य क्या है मेडिटेशन के थ्रू? थॉट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और क्वांटिटी को कम करना। ठीक है, क्वालिटी को एलिवेट करना, क्योंकि एलिवेटेड थॉट्स हमारे अंदर पावर भरते हैं, शक्ति भरते हैं, राइट? और वीक थॉट्स, कमजोर थॉट्स हमारी शक्ति को ड्रेन करते हैं, हमें कमजोर बनाते हैं। सब अनुभवी बैठे हैं यहाँ पे, हम सब ने पावरफुल थॉट्स भी कभी क्रिएट करे। कई बार हम नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई और आके कहता है अरे आप तो इतने अच्छे हो, आप में तो बड़ी पावर है, आपकी ये बात तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, वो पावरफुल थॉट्स दे रहा है आपको, आपके अंदर शक्ति बढ़ती जाती है। क्या हम ये अपने लिए नहीं कर सकते? वाई वी ऑलवेज नीड कि कोई हमें आकर हमें एलिवेट करे, हमारी थोड़ी महिमा करे? आज की दुनिया में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। आपको डाउन करने वाले सारे मिलेंगे, लेकिन आपकी महिमा करने वाले नहीं मिलेंगे। आपने 10 अच्छे काम करे तारीफ नहीं करेंगे, एक कोई कमी रह गई उसकी बुराई जरूर कर देंगे। तो कुछ थॉट्स को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना और थॉट्स की स्पीड को कम करना, राइट? तो ये मेडिटेशन है। विचार शून्य होना नहीं है। तो कई लोग इस पर मेहनत करते रहते हैं, कोई थॉट ना आए, कोई थॉट ना आए, और ही ज्यादा थॉट्स आते हैं फिर। तो फिर कई बार कहते हैं बहुत हैवी हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप जबरदस्ती एक प्रवाह को ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हो, उसे दिशा देते हैं, ब्रेक नहीं लगाते, राइट? तो जैसे तूफान आता है, कई बार हम कहते हैं विचारों का तूफान आ रहा है। तो तूफान जब आता है, तूफान डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन उसी को अगर आप रास्ता दे दो, जैसे पानी है, बाढ़ आती है डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन उस बाढ़ के पानी को अगर पहले ही आप उसको चैनल्स बना दो और उसको डायरेक्शन देके डिवाइड कर दो, तो वही खेती के काम आ सकता है, राइट? डैम में उसको स्टोर कर दो। तो राजयोग मेडिटेशन इज चैनलाइजिंग योर माइंड टूवर्ड्स पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स, देन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब क्या नहीं है मेडिटेशन? मेडिटेशन विचार शून्य होना नहीं है, मेडिटेशन कोई प्रार्थना नहीं है, मेडिटेशन कोई मंत्र जाप करना नहीं है, राइट? तो ये क्लैरिटी हो गई। तो क्या है मेडिटेशन, अब करना कैसे है? तो मेडिटेशन राजयोग की परिभाषा आपको मैं बता रही हूं, उसके एक एक शब्द को समझेंगे हम। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, इसीलिए पहला चैप्टर आपका क्या, आपके देह नहीं हो। मेडिटेशन किसको करनी है? आत्मा को। तो पहले अपने को उस लेवल पे तो लाना पड़ेगा ना कि मैं ये हूं, देन ओनली आई विल कनेक्ट, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक दो तार हैं, दो जो वायर होते हैं, अब प्लास्टिक फिल्म चढ़ी होती है उसके ऊपर, तो आप क्या करते हो, उसको कट करते हो, उसके अंदर से कॉपर का तार निकाल के उन दोनों को जोड़ते हो, तो करंट पास होता है, राइट? अगर दो ऐसी प्लास्टिक की उसको ऊपर रख दोगे तो करंट पास होगा नहीं।
तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले देह सहित देह के सर्व संबंध। जब मैं आत्मा हूं तो मेरा सिर्फ परमात्मा से कनेक्शन है, जब मैं देह हूं, मैं अदिति हूं, तो मेरा फिर सबसे कनेक्शन हो जाता है। अदिति किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, राइट। लेकिन जब मैं आत्मा हूं तो मेरा इससे बाकी भी सब आत्माएं हैं, तो मेरा संबंध किससे, परमात्मा से। तो देह को भी भूलना है और देह के संबंधों को भी भूलना है। भूल आत्म स्वरूप में स्थित होकर कि मैं कॉन्शियस लाइट, अपने स्वरूप को इमर्ज करें। मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूं आप उसको अपनी बुद्धि में इमर्ज भी करें, मैं एक कॉन्शियस लाइट, अपने स्वरूप को देखें, क्योंकि बुद्धि को कुछ एकाग्र होने के लिए चीज चाहिए। बुद्धि में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की, अब परमात्मा शिव का भी परिचय मिल गया, परम धाम का परिचय मिला। तो परम धाम लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, जहां हम आत्माएं परमात्मा के साथ रहती हैं, जहां से हम आए हैं। तो चित्र सामने आया, मैं आत्मा, बुद्धि से ज्योति बिंदु परमात्मा शिव को स्नेह युक्त स्मृति से, शिकायतें वाली स्मृति से नहीं कि अच्छा भगवान जी मिले अब इनसे सारी शिकायतें कर लो। राजयोग की सही डेफिनेशन ये, बाकी हाँ उनसे हम जब संबंध अलग अलग करते हैं तो हम शिकायतें भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। लेकिन अभी जो जिससे हमारे विकर्म विनाश होंगे, किए हुए पाप विनाश होंगे, भगवान उसकी विधि बताते हैं। तो परमात्मा शिव की स्नेहयुक्त स्मृति रखना ही राजयोग है। जब हम स्थित होकर अपने को आत्मा समझ के बाबा से कनेक्ट होते हैं, बहुत प्यार से उन्हें याद करते हैं, उनसे मिलने वाली प्राप्तियों को अपने अंदर भरते हैं, दैट इज राजयोग। उससे क्या होता है, हमारे अंदर की कमी कमजोरियां समाप्त होती हैं। अब आज देखो इस बात को, कर्म फिलॉसफी का एक अलग चैप्टर है, बट मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि हम सब इस बात को मानते हैं कि आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी है, दुख है, कोई कमजोरी है, परेशानी है, कोई चैलेंज है, दैट मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ आर पास्ट कर्मास। मानते हैं नहीं मानते हैं? भगवान ने तो नहीं दुख दिया ना, कह देते हैं भले उसको, भगवान ही सुख दुख देता है, लेकिन उसने तो नहीं दिया ना। आप मम्मी पापा हो तो आप अपने बच्चे को दुख दोगे? तो वो तो सुप्रीम है, हमें तो फिर भी कमियां हो सकती हैं, है ना। तो जो हमारा किया है इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में, वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे विकर्म मतलब बुरे कर्म, उसका स्टॉक तो है ना हमारे पास। तो विकर्म का दो तरीके होते हैं, एक है सजाए भोगो, परेशानियां आ रही हैं लाइफ में, धन का भी अभाव आ रहा है, बच्चे भी ऐसे नलायक निकले हैं, हाँ संबंध भी सारे खराब हैं, गलत दोष भी हम पे लग रहे हैं, और ये शरीर भी साथ नहीं देता। तो ये तो विकर्म है आपके, आ रहे हैं सामने, भोगो। दूसरा होता है परमात्मा से कनेक्शन लगा के अपने अंदर हम शक्ति भरते हैं, तो हमारे ऑटोमेटिकली वो विकर्म भस्म होते हैं। अब ऐसा नहीं है आपके कर्म जो है वो आपका, तूफान तो आएगा जीवन में बट आपको एहसास नहीं होगा, थप्पड़ तो लगेगा लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी, राइट। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कहता कि कर्म जो किया उसका फल मिलेगा, लेकिन मेरी याद से, याद मतलब सिर्फ उसको पुकारना नहीं, जो हम उसे डाउनलोड कर रहे हैं शक्तियां, उस याद से, उस शक्ति से, उन स्मृतियों से, मैं तुम्हें इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम बस छलांग लगा के उससे निकल जाओगे, इजी हो जाएगा, नहीं तो विकर्म विनाश करने का भी राजयोग बाबा एक सहज तरीका बताते हैं, नहीं तो भोगो या योग में रहो। अब कई कहते हैं आप तो बड़े राजयोगी हो, आपकी दादियां इतनी, उनकी तबीयत खराब हुई, इतना सब हुआ, तो उनकी तो तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर आत्मा अपनी जर्नी पर है, अनेकों जन्म के अंत में ये परमात्मा से हमें राजयोग सीखने को मिला, तो अनेकों जन्मों के जो हमने कर्म किए हैं वो हमारे सामने जरूर आएंगे, बट हमने अपनी दादियों को देखा, राजयोग का इतना शक्तियों का स्टॉक था, पैरामीटर सारे डाउन है बट वो बिल्कुल शांत, कोई असर ही नहीं बीमारी का, जैसे शरीर से डिटैच। तो ये इफेक्ट आता है कि आप पे उसका रिजल्ट आएगा बट आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी। आपका कुछ आया है बच्चे की तरफ से पेपर आया है, धन की तरफ से पेपर आएगा, लेकिन आपको इतना इजी लगेगा, आपको मुश्किल ही नहीं लगेगा और आराम से पार कर लोगे, आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगी वो प्रॉब्लम। सो ये राज्यों की परिभाषा, अगेन अपने को आत्मा समझ, परमात्मा से कनेक्ट, प्राप्तियों का अनुभव, दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें राजयोग एक स्पिरिचुअल यात्रा है, उस यात्रा में हमारे को दो फैकल्टीज, जिसके बारे में आप पहले दिन से सुन ही रहे हैं, मन और बुद्धि। अब ये मन और बुद्धि कैसे काम करती है, क्योंकि यही भटकाती भी है हमको और यही एकाग्र करने की शक्ति भी है। हमारे मन की दो क्वालिटीज हैं बहुत अच्छी, इस समय का कोई बाधा नहीं है, इट कैन क्रॉस ऑल टाइम बैरियर्स, यस और नो? 10 साल पहले जाने में आपको कितना टाइम लगता है, कितने पुल क्रॉस करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं नहीं, 50 साल पहले के भी सेकंड में याद आ सकते हैं, तो टाइम बैरियर नहीं है। फ्यूचर में भी हम चले जाते हैं बिना मतलब चिंता करते रहते, क्रिएट करते, तो दूसरा डिस्टेंस बैरियर नहीं है, एक सेकंड में लंदन पहुंच जाता है तो एक सेकंड में परमधाम भी पहुंच जाता है, राइट? ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर और 25 मील में कोई फर्क है उसके लिए, कुछ भी नहीं है। तो ये क्वालिटीज मन की दो हैं जो हम यूज करते हैं राजयोग में। सेकेंडली बुद्धि, बुद्धि हमारी जो है वो निर्माण करती है चित्र का। एग्जाम्पल, मैं आपको कहती हूँ आपको सोचना है, जो मैं एक शब्द दूंगी, सोचना है बस, ठीक है? एप्पल्स, सोचिए, फिनिश, ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने, हाँ, लेकिन क्या सोचा? पेड़ पे लगे। अच्छा, आपको कुछ दिखा मन में, कुछ दिखा, क्या दिखा? एप्पल की फोटो है, ठीक है, किसी को बच्चे की किताब में दिखा होगा, किसी को पेड़ लगा दिखा, किसी को फल की टोकरी, किसी को एप्पल जूस, किसी को अपने फ्रिज में एप्पल दिखे होंगे, है ना? दिखे या नहीं दिखे, अच्छा मैं कहती हूँ, अब जो कहूंगी वो देखना नहीं, ठीक है? ब्लू एलिफेंट, देखना नहीं बिल्कुल, देखा? एलिफेंट देखा? अगर ब्लू भी कलर करना चाहोगे तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, हमारी बुद्धि के अंदर जो मेमोरी है, जैसे ही कोई शब्द आता है स्कैनिंग शुरू होती है और सेकंड में चित्र आता है, और यही योग में सहयोग भी देता है और योग में बाधा भी डालता है। आप मेडिटेशन कर रहे हो, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ऊपर जाने लग रहे हो, बस इतने में आएगा, अरे आज तो बच्चे का एग्जाम था, मैंने उसे ऑल द बेस्ट भी नहीं कहा। हाँ, अब वो चित्र अगर घर का आ गया तो मन के संकल्प उधर चलने लग जाएंगे। इसलिए चित्र बनाना क्यों जरूरी है? जिससे हमारा मन एकाग्र रहे। या तो मन भटकता है या बुद्धि भटकती है। अगर आपने, लेकिन इसमें बुद्धि जो है ना वो बड़ा भाई है, मन छोटा भाई है। अगर बुद्धि पर कंट्रोल रखा, उसको चित्र उस पर फोकस रखा, तो मन के संकल्प उसी पे चलते रहेंगे। लेकिन चित्र ऑफिस का आ गया, किचन का आ गया, बच्चे का आ गया, तो संकल्प कोई डायरेक्शन ले लेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी राजयोग से हमारे अंदर प्रैक्टिस से कंट्रोलिंग पावर आती चली जाती है, धीरे धीरे आती है, अभी नहीं। इसलिए अपने साथ एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत प्यार से चलो, अपने को प्यार करो, अपने मन को दोष मत दो। मेरा मन बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त है, इस मन से ही तो मैं कितना कुछ फील कर सकती हूँ ना। तो अभी हम मन और बुद्धि को यूज करेंगे राजयोग के अभ्यास के लिए। इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने अंदर की यात्रा आएंगे, बाहर को देखना बंद, अपनी आत्मिक स्थिति को इमर्ज करना, राइट? कैसे करेंगे, आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ। विजुलाइज करेंगे कि मैं मस्तक के बीच में, सामने भी देखते जाइए, प्लीज आंखें नहीं बंद कीजिए, सामने देखिए, मैं मस्तक के बीच में चमकते हुए एक सितारा, सफेद प्रकाश का एक बिंदु, शरीर से ध्यान को हटा के मस्तक के बीच में एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, उस स्टार को ही देखते रहेंगे, वो कहाँ पर है, मेरे ब्रेन में, मध्य में, चमकता हुआ सितारा, मैं शांत हूँ, एकाग्र हूँ, नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयार हूँ। अपने सातों गुणों को याद करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और पिक्चर सितारे की रखें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता मेरा मूल धर्म है। ठीक है, तो ये अपने आप को आत्मा के थॉट्स देकर, बुद्धि में आत्मा का चित्र इमर्ज करके, अपने आप को मस्तक के बीच में, आत्मा का स्थान क्या होता है, ये जहां बिंदी लगाते हैं इसको अगर हम अंदर ड्रिल करें और यहां से ड्रिल करें, उसका जो मीटिंग पॉइंट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के बीच का, वहां पर आत्मा निवास करती है, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट है। जैसे गाड़ी में भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ही गाड़ी चला सकते हो ना, बैक सीट पे तो नहीं बैठोगे, तो ये ड्राइविंग सीट है। ओके, देन है अपवर्ड जर्नी। अब मैं आत्मा स्थित हो गई, अब मैं ऊपर जाऊंगी। कैसे जाऊंगी मैं ऊपर? देखिए, मैं आत्मा निकली इस शरीर को छोड़ के, ये विजुलाइज करना है। बिंदु सितारा, ऊपर जा रही हूं, आसपास की सीनरियों को देखती हुई, सबको नीचे छोड़ती हुई, बादलों से पार होती हुई, पृथ्वी से बाहर निकल, चांद तारागण से पार जाती हुई, अपने घर की तरफ, इस पूरे तारामंडल को, गैलेक्सीज को पार करती, पांच तत्वों की इस सृष्टि को पार करती हुई, छठे महतत्व की दुनिया, परम धाम, जो मेरा अपना घर है, मैं आत्मा वहां पहुंच रही हूं। और जहां बीच में सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव महाज्योति अपनी सर्वशक्तियों की किरणों के साथ विराजमान है, और मैं आत्मा उनके समीप जाकर अनुभव कर रही हूं, मैं सबसे पास में हूं, ये सारी आत्माएं हैं लेकिन मैं आत्मा उनके बिल्कुल करीब हूं। ऐसे विजुलाइज करना, मन को संकल्प देना है, क्योंकि मन बुद्धि से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये अपवर्ड जर्नी। अच्छा, फिर वहां से अपने आप को भर के, जो भी चाहिए, शांति, क्योंकि वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है ना, ज्ञान का सागर है। तो जो आपको डाउनलोड करना है, आप कनेक्ट होइए, एक संकल्प कीजिए, आपके अंदर डाउनलोड हो रहा है, उसको महसूस कीजिए, क्योंकि पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन, दूसरा है रियलाइजेशन, उसको रियलाइज कीजिए, एंड तीसरा है एक्चुअलाइजेशन, वो आपके अंदर आता चला जाएगा। तो वहां से भर के फिर हम नीचे आएंगे। अच्छा, नीचे आने के बाद जो थर्ड जर्नी है वो है आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी का मतलब है जो मुझ आत्मा ने अपने अंदर भरा है, अब उसको अपने पूरे शरीर में और आसपास के वातावरण में, पूरे विश्व में अपना एक ऑरा क्रिएट करना, अपनी एक प्रेजेंस से, पॉजिटिव प्रेजेंस से वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करना, दैट इज आउटवर्ड जर्नी। वैसे भी आप करो या नहीं करो, हर इंसान का एक ऑरा होता है, जो वो सोच रहा होता है, जो उसकी दृष्टि होती है, वृत्ति होती है, स्मृति होती है, उस आधार पे उसका ऑरा ऑटोमेटिकली बनता है। तो अब हम क्या यहां करते हैं, राजयोग से हम अपना पॉजिटिव ऑरा बनाते हैं, जो सिर्फ हमें ही मदद ना करें, औरों को भी करें, राइट। तो ये तीन स्टेप्स हैं, फाइन। तो चले मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए। जी पूछ लीजिए। कनेक्शन तब होगा, सबसे पहले आपको कोई संबंध बनाना पड़ेगा। अगर संबंध नहीं बनाया तो वो बस ऐसा लगेगा, मैंने ये देखा, ये हुआ, उससे भी प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होगी। लेकिन जब आप रिलेशन बनाएंगे, एग्जाम्पल ही देते, एक छोटा सा, यहाँ पर आपको मैंने किसी से इंट्रोड्यूस किया, आपको मैंने कहा आप गले लगी है, राइट। तो आप उनसे गले लगे क्योंकि मैंने कहा आपको, ठीक है, आपको उनसे प्यार वार्म्थ की फीलिंग आएगी। बट लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ और मैं आपको हग करती हूँ, आपको फीलिंग आएगी, क्योंकि आपका मेरा कनेक्शन है, आपका मेरा प्यार है, राइट। तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो आपको फीलिंग आएगी ना उस चीज की। उसके साथ नहीं आएगी, उसके साथ टेम्परेरी अच्छा फॉर द सेक आपने कहा मैंने कर लिया, राइट right? तो वही होता है जब आपका उससे प्यार का कनेक्शन, इसलिए स्नेह युक्त याद ये राजयोग के उसमें ये भी एक शब्द है, इसके बिना वो कनेक्शन नहीं होगा। और प्राप्तियां हो रही हैं या नहीं हो रही वो कैसे पता लगेगा? ऐसा तो नहीं आप मेडिटेशन से उतरे आपको मतलब एकदम से लगेगा मेरे अंदर पावर्स आ गए, कभी कभी लगेगा भी, मोस्ट ऑफ द टाइम लगता भी है, जो स्मृति रखते हो आप वो आपकी स्थिति बनाती है। लेकिन आपको तब पता लगेगा जब आप किसी चैलेंज में होंगे, और जैसा आप पहले बिहेव करते थे आप ऐसा नहीं करोगे, यू विल फील लाइट, आपको टेंशन नहीं होगी, या होगी भी तो उतनी नहीं होगी जैसे आप पहले करते थे, यू विल बी कूल, आप सॉल्यूशंस जल्दी ढूंढ पाओगे, आपके घर वाले परेशान होंगे आप परेशान नहीं होंगे। ये उसकी निशानियां हैं कि आपके अंदर शक्ति आ रही है, नहीं वो थोड़ा हम ऐड बाद में करेंगे इसमें, ठीक, क्योंकि टाइम हो रहा है, प्लीज। हाँ इसी को आप बाद में करिएगा, बट नहीं अभी नहीं पॉसिबल, बाद में, ठीक है। सो अच्छा हम पहले मेडिटेशन करेंगे, तो इसमें हमने जो मन और बुद्धि की बात कही ना, वो थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या हमारा मन और बुद्धि साथ में है। तो अभी एक एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं हमारा मन बुद्धि हमारे हिसाब से चलता है। अभी यहां बैठे बैठे सभी चलिए अपने घर पे पहुंच जाइए, इजी है, घर पे पहुंचे, बेल बजाइए, बेल जब तक आप बजाते हैं कोई अंदर से आता है, अपने घर का गेट देखिए, दरवाजा क्या डिजाइन है, किस मटेरियल का बना हुआ है, उस दरवाजे को निहारिए। अब आप खोली, खुलता है दरवाजा अंदर से, सामने देखिए किसने खोला दरवाजा, अंदर एंटर करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, आप अपने सूटकेस अंदर करते हैं, फिर आप किचन में जाते हैं, वहां पानी रखा है, पानी भरते हैं एक ग्लास अपने लिए, पैन में रख, उसे गैस पर रखते हैं थोड़ा वार्म करने के लिए, ठंडी अच्छी है, फिर उसको ग्लास में पलट के अपने कमरे में ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, बैठ जाइए सोफे पर, आसपास पूरी नजर दौड़ाइए, पर्दे, दीवारें, जो भी दीवारों पे लगा है, टेबल, क्या सामान रखा है, रिमोट उठाइए, टेलीविजन सामने खोलिए, क्या आ रहा है उसमें, आराम से पानी सिप पर सिप पीजिए, गले को आराम दे रहा है ये थोड़ा निवाया पानी, गर्म पानी शरीर को रिलैक्स कर रहा है। नाउ कम बैक। अच्छा देखिए आप जब घर पहुंचे, क्या आपको अपना गेट दिखाई दे रहा था? दिखा? फिर एंटर करे, कौन मिला, किसने गेट खोला था, दिखा कोई व्यक्ति? हाँ कोई भी हो सकता है वो आपके घर का। आप किचन में गए, पानी लिया, सारी किचन दिख रही थी, आप कर रहे थे उसको, राइट? और आप पानी लेके बैठे, टीवी खोला, टीवी पे क्या आ रहा था, कुछ दिखा? अच्छा आपने जब पानी पिया, गले से नीचे उतरा, एहसास हुआ कि गले में आराम पड़ रहा है। तो ये सब अगर आप देख पाए और महसूस कर पाए, इसका मतलब आप मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, ठीक है? यही करना है बस, बस राइट नॉलेज होने चाहिए। इस घर की नॉलेज हमको है, कहाँ पर्दे हैं, कहाँ सोफा है, कहाँ टेबल है, कहाँ पैन है, कहाँ किचन है, दरवाजा कैसा है, ये घर आपको पता था तो आपके लिए देखना इजी था। उस घर की पहचान अभी मिली है, राइट? अभी कैसे गए थे, मन बुद्धि से ही गए थे ना, फिजिकली तो आप यहीं बैठे हो। अब उस घर की पहचान दे दी कि वो कैसी दुनिया है, वो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है, परमात्मा कैसा है, ज्योति बिंदु लाइट स्वरूप, जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है ऐसे वो बिंदु में से प्रकाश निकल रहा है, मैं भी ऐसी आत्मा हूँ, बस मुझे उनके पास जाके बैठना है और उनकी किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। जैसे एक चार्जर कनेक्ट करते हैं, आता है ना बैटरी, अच्छा 8% से 10% हुई, 12% हुई, 15% हुई, बढ़ती चली जाती है राइट। तो बस मैं आत्मा बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और मैं उस सागर से, पिता से अपनी बैटरी को चार्ज कर रही हूँ, शक्तियों से भर रही हूँ और बस फिर वापस आ जाना, घर जाना है मन बुद्धि से, वापस आ जाना है, सिंपल है ना। तब तक मुश्किल था जब तक ये नहीं पता था किसको जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ बुद्धि को एकाग्र करना है। इसलिए आपको पिक्चर दिखा दी, पिक्चर से क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बाकी तो अनुभव के साथ और क्लैरिटी आएगी राइट। चलिए अब चलते हैं उस यात्रा पे, छोटी सी यात्रा करके आएंगे समय को देखते हुए। ओम शांति। मैं मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा अपना ध्यान ले जाए इन दो आंखों के पीछे, जहां तिलक लगाते हैं उसके पीछे भ्रिकुटी के मध्य में मैं एक टाइनी स्टार के रूप में चमक रहा। अपनी बुद्धि को एकाग्र करें बुद्धि में और कोई पिक्चर नहीं, कोई आए भी तो साइड कर दीजिए। मस्तक के बीच में चमकती आत्मा जैसे डायमंड चमक रहा हो, ऐसे मैं आत्मा चमक रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति की तरंगे मुझसे निकल रही है, जैसे ठहरे हुए पानी में पत्थर डाले तो तरंगे बनते हैं। विजुलाइज करें मुझ आत्मा से गोल गोल तरंगे शांति के वाइब्रेशंस के रूप में निकल रही हैं। शांति मेरा स्वधर्म है, मेरी बुद्धि एकदम एकाग्र है अपने स्वरूप पर। अब मैं आत्मा मन और बुद्धि के विमान पर बैठ उड़ चली इस शरीर को यहीं छोड़, अपने पिता से मिलन मनाने मैं चमकता हुआ सितारा इस बिल्डिंग से ऊपर और ऊपर जाता जा रहा हूं। नीचे पूरा ज्ञान सरोवर दिख रहा है। मैं और तेजी से सितारा, हल्का सा छोटा सा सितारा, बादलों को पार कर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल चांद तारा कण को पार करते हैं ऊपर की ओर जा रहे हो। दूर कहीं लाल लाइट, वो लाल लाइट मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, जैसे कोई मैग्नेट खींचती है अपनी तरफ। और मैं सितारा उधर खींचती चली जा रही हूं और मैं एक ऐसी जगह आ जाती हूं, एक अलग दुनिया में, जो सुनहरे लाल प्रकाश की है दुनिया। विजुलाइज करें इस लाल प्रकाश में एक चमकता हुआ दिव्य सफेद सितारा, स्वरूप में बिंदु लेकिन शक्तियों में सिंधु, सूर्य की बातें, सर्व शक्तियों की किरणें, शिव बाबा से निकल पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। और मैं नन्ना सा सितारा। सुप्रीम फादर के बिल्कुल पास, शिव बाबा के बिल्कुल पास चला जाता हूं। विजुलाइज करें बाबा की समस्त किरणें एक लेजर लाइट बन मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। बुद्धि से देखें बाबा की सर्व शक्तियां लेजर लाइट के रूप में मुझ आत्मा को टच कर रही है। ये लेजर लाइट, शक्तिशाली लाइट मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। जैसे एक डायमंड में कुछ दाग हो जाते हैं कई बार, इसी रूप से मैं हूं तो डायमंड, बट मेरे अंदर कमी कमजोरियों के दाग हैं। शिव बाबा की ये लेजर लाइट मेरे अंदर जाके इन काले दागों पर फोकस कर इनको भस्म कर रही है, इनको समाप्त कर रही है। और बाबा की यही लेजर लाइट अब उस जगह पर शक्ति भर रही है, शांति की शक्ति, परमात्मा स्नेह की शक्ति। मैं देख पा रही हूं मुझ आत्मा का स्वरूप फ्लॉलेस डायमंड की तरह। मेरी चमक पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। स्वयं भगवान, भाग्य विधाता मेरे पिता, मुझे सर्व गुणों और शक्तियों से भर रहे हैं। मैं अपने दिव्य स्वरूप पर एकाग्र हूं। सर्व शक्तियां अपने में समाये हुए अब नीचे की ओर आ रही हूं और नीचे स्पेस में धरती पर बादलों से नीचे आती इस हॉल में अपने शरीर में मस्तक के बीच प्रवेश कर अपनी संपूर्ण शक्तियों की लाइट अपने ब्रेन में फैला रही हूं। विजुलाइज करें मेरा ब्रेन एनलाइटेंड हो रहा है, मेरी आंखें, नाक, कान, पूरा चेहरा इस लाइट से भरता जा रहा है। ये लाइट मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, गर्दन, कंधे, हाथ, चेस्ट, एब्डोमेन, कमर, नीचे पैरों तक परमात्मा शक्तियों का प्रवाह मुझे संपूर्ण रूप से हील कर रहा है, शक्ति दे रहा है। मेरा रोम रोम, एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, शरीर का हर एक हिस्सा इस शक्तिशाली लाइट से भरपूर है। मैं इतने भरपूर हो चुके हूं कि मेरे पूरे शरीर से रोम रोम से ये लाइट बाहर की ओर निकल रही है। मेरे चारों तरफ एक गोल घेरा परमात्मा शक्तियों का कवच बन गया है। जो
जो मेरी हर बाहरी नेगेटिविटी से मेरी रक्षा करता है। मेरा ये ऑरा बढ़ता जा रहा है, दूर दूर तक मेरे से निकलने वाली किरणें जा रही हैं। मैं मस्तक के बीच चमकती आत्मा, परमात्मा की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। जीवन के हर सीन को, हर चैलेंज को, उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं सशक्त हूं, शांत हूं, अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड हूं। हजार बुझाओं वाला भगवान मेरा साथी है। उसकी छत्र छाया के नीचे मैं सदा सुरक्षित हूं। ओम शांति। अभी छोटा सा मैंने मेडिटेशन में अमृत वेला में भी कराया था, थोड़ा सा आज आपकी क्लास कम है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ। आई एम टेकिंग द लिबर्टी, डाइनिंग में जरूर वेट कर रही हूँ। इसकी साइंस के बारे में आपको बताना चाहूंगी, व्हाई इट वर्क्स। तो ये वर्क इसलिए करता है, जैसे कई कहेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं भगवान की संतान हूं, ये कहने से क्या मेरे अंदर वो शक्ति आ जाएगी? क्योंकि विजुअलाइजेशन है, कई कहते तो आपकी कल्पना है, खाली कल्पना होती है जो रियलिटी नहीं होती है, विजुअलाइजेशन होती है जो रियलिटी। जैसे आपने अभी घर गए, विजुअलाइज किया ना, आपका घर है ना सचमुच में, तभी तो कर पाए। तो रियलिटी में मैं आत्मा हूँ, रियलिटी में मेरा घर है, रियलिटी में मेरा वो पिता है, हाँ रियलिटी में वो सर्वशक्तिमान है, सब रियल ही है। बट हाउ इट वर्क्स, क्योंकि हमारे हर थॉट के साथ हमारा शरीर कनेक्टेड है। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे ही बैठे हैं, अच्छे मूड में है, लेकिन अकेले हैं, अचानक आपको 10-15 साल पहले की कोई ऐसी बात याद आ जाती है जिसमें आपको बहुत दुख मिला था। कुछ भी हो सकता है, किसी प्रियजन का जाना हो सकता है, कोई नुकसान, कोई आपकी किसी ने बेइज्जती करी हो, वट एवर, लाइफ में दुख मिला आपको, राइट? तो वो आप जब आज उसको याद करते हो सीन बाय सीन, सारी बातें याद आ जाती है, ऐसा लगता है किसी जख्म को उखेड़ दिया हो वो सारी बातें। उसने ये कहा था, मैंने ये कहा था, तब ये हुआ था, और वो अंदर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, और वो कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। और कोई हमसे पूछे आप रो क्यों रहे हो, आपका मूड क्यों, नहीं 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 कुछ भी नहीं, कुछ हुआ क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो पुरानी बात। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, वो तो 20 साल पहले हुई थी ना, 10 साल पहले हुई थी, आज वो गुस्सा, आज वो दुख, वो पेन, वो आंसू क्यों आ रहे हैं? वो तो बात ही खत्म हो गई, आज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि आप मन के द्वारा पास्ट में जाके बुद्धि से विजुलाइज कर रहे थे या आपके साथ रियलिटी में ये सीन अभी हो रहा है। यहाँ ब्रेन थोड़ा मूर्ख है, वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता। उसको लगता है आपके साथ रियलिटी में हो रहा है, और जितना आप क्लोजली इमोशंस के साथ उसको विजुलाइज करते हो, आपके अंदर आपकी बॉडी उस तरह के हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो आपको वैसा महसूस कराती है। है तो सारा हार्मोनल प्रोडक्शन ना, क्यों एक बच्चा एक रात को ठीक है, एग्जाम में जाते ही जाने से पहले ही पेट में दर्द हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो रही है, हार्ट पेशेंट थोड़ी है, क्यों हार्ट बीट तेज हो रही है तेरी, घबराहट, एंग्जाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि जो थॉट आ रहा है वो बॉडी में मैनिफेस्ट होते हुए वो घबराहट पैदा कर रहा है। मतलब मेरे अगर हर थॉट से मेरे शरीर में शक्ति कम हो रही है, तो क्या मेरे शरीर में शक्ति बढ़ नहीं सकती पॉजिटिव थॉट से? इट्स ऑल अबाउट थॉट ना, एंड इट्स साइंटिफिक। कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे गए, प्लेसिबो एक्सपेरिमेंट जिसमें कहते हैं नी का ऑपरेशन 30 लोगों का किया, 30 लोगों का नहीं किया, लेकिन सिर्फ उनको फिल्म में दिखाया किसी और का ऑपरेशन होते हुए कि आपके घुटने का ऑपरेशन कर दिया गया, दोनों का इफेक्ट एक ही था। टांका उन्होंने कट लगाया, अंदर से ऑपरेशन नहीं करा, सील दिया, उसको पेशेंट को लगा मेरा ऑपरेशन हो गया, दोनों में सेम इफेक्ट आया। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही ऑपरेशन नहीं कराया, मेरा मतलब है बहुत सारी बीमारियां परेशानियां, मेडिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बट उसके साथ मेडिटेशन जो है, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होगी, राइट? हर क्षेत्र में सफलता ज्यादा मिलेगी।
क्योंकि कहते हैं हम सबसे पहले बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उसके हाथ में केस नहीं रहता तो क्या कहते हैं, वो कहता है जी वो ऊपर वाले को याद करो। हमारे पास तीन डॉक्टर होते हैं, एक तो वो फिजिकल डॉक्टर है ही, एक वो ऊपर वाला भी है, उसको टाइम से याद करो लेकिन लास्ट में नहीं याद करो, और तीसरा होता है मैं स्वयं भी अपना डॉक्टर हूं अपने विचार शक्ति से। तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो कोई भी समस्या पे काम हो सकता है। ये फिजिकल बीमारी की बात नहीं है, मन की बीमारियों की भी बात है। कोई भी लाइफ में चैलेंज आया, सिचुएशन आया, मन को दुखी करके उसको, उसकी पावर को खत्म करके फिर हम परेशान होते रहे, इससे मदद उससे मदद रोते रहे, जो हमारे सारे सेशंस में आपको बताए, उसकी जगह सिर्फ अपनी एक सोच को ठीक कर ले, अपनी उससे विड्रॉ करें, उससे कनेक्ट करें, शक्तियों को लें, आए संबंध को बनाएं, आप देखेंगे लाइफ बहुत इजी हो जाती है। कोई ना घर बार छोड़ना आपको, कोई ना आपको कुछ और चेंज करने को कह रहा है, घबराओ नहीं कुछ भी। अगर कोई चीज कहते भी हैं कि कोई कहता है प्याज लहसुन नहीं खाओ, प्योरिटी में रहो, ऐसे करो, वो इसलिए आत्मा जितनी अंदर से प्योर होगी उस प्योर फादर के साथ कनेक्शन अच्छा लगेगा। बाकी ऐसा नहीं है कोई कुछ भी करता हुआ नहीं कर सकता, इट्स जस्ट स्टेजेस हैं कि आप कितना उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये सब चीजें मैं हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ पे सफाई करी हुई है तो आपको बैठना अच्छा लग रहा है, नहीं तो अदरवाइज यू विल फील अनकंफर्टेबल, चीजें डिस्ट्रैक्ट करती, राइट? इट्स जस्ट दैट, कर तो आप तब भी लोग हैं। तो जितना हमारी बाहरी आंतरिक शुद्धि होती चली जाती है, दैट हेल्प्स, दैट्स इट। शॉर्ट में आंसर दे रही हूँ, बाकी गहराई जब आप अपने अपने जगह पे जाएंगे, सेंटर से कनेक्ट होंगे, वहाँ डेप्थ में समझेंगे। कोई सेंटर नहीं जा सकता, ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकता है। कोविड ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान भी कर दी है ना, टेक्नोलॉजी हमें, हम यूज़ करने के आदि हो गए, हम तो उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन प्लीज़ जो आपने मेहनत करके ये चार दिन निकाले, बहुत मेहनत है, आए नो, बहुत लोग अपने अपने काम छोड़ के कुछ कुछ कैंसिल करके आए, हम खाली थोड़ी बैठे थे। लेकिन एक बात की शाबाशी अपने आप को देना, मैंने जिंदगी में अपने लिए टाइम निकाला है। प्लीज एक मेरी वो है, आज देखो ड्रामा में था, मुझे मौका मिला आपसे इतनी बात करने के, नहीं तो ऐसा था नहीं प्लान में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये घर जाके ऐसा शिक्षा किसी को मत देना शुरू करना, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। आप आए हो अपने लिए आए हो और अपने पर ही काम कर सकते हो, ये लेकर हाँ शेयर जरूर कीजिए, मौका देकर शेयर कर सकते हैं, हमने वहां ये सीखा, हमने सीखा, आप में चेंज आएगा, उन्हें खुद अच्छा लगेगा। लेकिन आप उन्हें लेक्चर देने लग जाओ, आप ये करो, आप ये करो, हमने वहां सीखा, तो कहेंगे पहले आप तो कर लो। हम तो आज तक सुनते हैं, हम तो आज भी जरा सा कुछ कहते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं मम्मी 16 साल हो गए आपको, कहते ओके थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो आप जब ये सीखेंगे ना, आपके टीचर्स बढ़ जाएंगे, आपके एग्जामिनर बढ़ जाएंगे, हर कोई कहेगा, जैसे वो कहा था ना ओम शांति से यही सीख कर आई हो आप मम्मी। तो इसलिए उस शांति की बिंदी को नहीं उतारिएगा, पेशेंस को जरा और अपने अंदर धारण कीजिए, अपने ऊपर काम करना, एंड यू विल सी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मेडिटेशन का जो रिजल्ट है, सिचुएशंस वोंट चेंज, और चैलेंजेस आएंगे, बट मेडिटेशन विल नॉट चेंज सिचुएशंस, इट विल चेंज यू। और जब आप बदल जाएंगे, आपके लिए वो सिचुएशन बदल जाएंगे, आपको वो वैसी दिखेंगी ही नहीं, एंड थिंग्स विल चेंज, राइट? फिर वो पति भी चेंज हो जाएगा, वो बच्चे भी चेंज हो जाएंगे, सास भी चेंज हो जाएगी, बॉस भी चेंज हो जाएगा, सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप चेंज हो गए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट।